ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। ग्यारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल पूरे देश और दुनिया में उत्साह और भागीदारी के साथ मनाया गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अलग अलग योग सत्रों में शामिल होकर कार्यक्रम का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित योग शिविर में शामिल हुईं। राष्ट्रपति ने वैश्विक मंच पर योग को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
योग अभ्यास करने से व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ती है। योग के अनेक प्रशिक्षण, प्राणायाम एवं योगासन की उपयोगिता बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रक्रिया को करने से किन किन रोगों का प्रतिरोध हो सकता है। आजकल जीवनचर्या से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम में भी योग चिकित्सा को उपयोगी माना जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस मुख्य योग दिवस कार्यक्रम में लगभग 2,72,000 लोगों ने भागीदारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व के विभिन्न भागों में तनाव, अशांति और अस्थिरता की स्थिति है। ऐसे में योग मानवता को शांति का मार्ग प्रशस्त करता है।
आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही, कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है।
योग दिवस पर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित देश के सभी भागों में योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के लेख को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि महिला और बाल कल्याण नीतियों में योग को शामिल करने से पूरे देश में जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिल रहा है। अपने लेख में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गर्भावस्था से पहले और बाद में योग को अपनाने से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान में जा रहे अतिरिक्त पानी को राजस्थान ले जाने के लिए नहर का निर्माण करेगी। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को कतई ना बर्दाश्त करने की नीति बरकरार है। श्री शाह ने कहा कि सरकार कश्मीर, नक्सल क्षेत्र और पूर्वोत्तर में आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में निवेश करने का एकमात्र और सबसे सुरक्षित तथा सबसे अच्छा स्थान है। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया को निर्देश दिया है कि वे चालक दल के कर्मचारियों के रोस्टर और समय निर्धारण संबंधी नियमों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाए। निदेशालय ने 3 अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई शुरू करने और इस संबंध में 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत श्रीलंका के लोगों को भी ईरान से सुरक्षित निकाल रहा है। इसके लिए श्रीलंका ने भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एकजुटता का ये कार्य श्रीलंका और भारत के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी का उदाहरण है और श्रीलंका के लोग इसकी सराहना करते हैं। इसराइल और ईरान के बीच संघर्ष के 9वें दिन हवाई हमलों में तेजी आई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने मध्य ईरान में मिसाइल डिपो और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के बीर शेवा, हाइफा और तेल अवीब में औद्योगिक क्षेत्रों के पास हवाई हमले किए। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी राज्य बोर्नो में आत्मघाती धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि एक महिला हमलावर विस्फोटक उपकरण पहनकर मछली बाजार की भीड़ में पहुंची और आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स के हेडिंगले में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त हो गया है। भारत के पहली पारी के 471 रन के जवाब में मेजबान इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 202 रन बनाए हैं। दिन के खेल के समाप्ति तक ओली पोप, सॉ और हैरी ब्रुक बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए पहली पारी में अब तक 3 विकेट तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।